रात का वक्त हो चुका था। खाने के बाद सबकी मंडली छत पर जमी थी। ये सब अंतरा की जिद का नतीजा था। रिश्ता जुड़े तो वक्त बीत गया था, पर अब भी सब लगभग एक दूसरे से अनजान थे, इसलिए उसने सब इंतजाम किया था। अहाना और पल्लवी भी रसोई का काम समेटकर वहां चली आई थीं। मौसम भी सुहावना था, न सर्दी की ठिठुरन थी और न ही गर्मी की उमस। सर्द हवाएं जरूर चल रही थीं और सभी इस खुशनुमा मौसम का आनंद उठा रहे थे। सब गोला बनाकर बैठे थे, बीच में खाने पीने का सामान रखा था, लाइट म्यूजिक भी बज रहा था। पहले गेम खेले गए जिसमें सबको जबरदस्ती पार्ट लेना पड़ा। कुछ बीती पुरानी यादें आज फिर ताज़ा हुईं, एक दूसरे की पोल खोली गई, कपल से डांस भी करवाया गया। सबने इस वक्त को खुलकर एंजॉय किया। बातों के बीच सबको एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिला और ये महफिल रात 1 बजे जाकर ख़त्म हुई। मौज मस्ती, हंसी मजाक, नाच गाने और ढेरों बातों के बाद अब सोने की बारी आई, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। जीजू, आज आप हमारे साथ सोएंगे, हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। अक्षय उठने ही लगा था कि निशांत के शब्द उसके कानों में पड़े और वो ठिठकते हुए पलटकर उसे देखने लगा। इतनी रात हो गई है, आपको इस वक्त मुझसे क्या बात करनी है? इतनी देर से बातें ही तो हो रही थीं और अब तो सब सोने जाने वाले थे। करनी है कुछ ज़रूरी बातें आपसे और अन्वय भैया से, इसलिए उनके साथ आप भी मेरे कमरे में सोएंगे। लो जी, तो छोटा पैकेट पूछ नहीं रहा था बल्कि उसे बता रहा था और अक्षय के साथ बाकी सब उसकी बातें सुनकर हैरान थे। निशांत, सोने का वक्त है, अब जो भी बात करना है वो सुबह करना, दिशांत ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो भी अंतरा का भाई था, कहाँ किसी की सुनने वाला था। नहीं भैया, कल तो जीजू चले जाएंगे, फिर मैं बात कब करूँगा, और दिन में आप सब बड़े आपस में लगे रहते हैं, मैं छोटा हूँ इसलिए मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं देता, इसलिए मैं अभी रात नहीं बात करूँगा ताकि आप सब मुझे बीच में टोक ना सकें और मुझे जो भी बातें करनी हैं सब आज खत्म कर लूँ। भैया ठीक तो कह रहा है निशु, जीजू उनके भाई हैं और वो तीनों साथ में सो जाएंगे और जो बात करनी होगी वो भी कर लेंगे, फिर क्या पता कब जीजू को वक्त मिले और वो लौट कर यहाँ आए। अंतरा ने भी निशांत की बात का समर्थन किया। उसके बाद उसने अक्षय की ओर नजरें घुमाई, चंचल मुस्कान उसके लबों पर बिखर गई और शरारत से आंखें मटकाते हुए कहा, जीजू आप जीजी की चिंता मत कीजिए, उनके साथ हम रहेंगे और उनका बहुत ख्याल भी रखेंगे, आप आज की रात अपने छोटे साले के साथ आराम से बिताइए। बेचारा अक्षय तो बुरा फंसा था, उसने तो कुछ और ही प्लान किया था, पर अब हालात एकदम से बिगड़ गए थे। मजबूरी ऐसी थी कि साफ साफ कह नहीं सकता था कि उसे अहाना के साथ रात गुजारनी है, वरना उसकी बात का गलत ही मतलब निकाला जाता। सब छेड़ते सो अलग, पर उससे पहले उसका संकोची और शर्मीला स्वभाव उसे ऐसा कुछ बोलने की इजाज़त ही नहीं दे रहा था और ना ही उनकी बात पर खुलकर एतराज़ जता सकता था। अक्षय की उम्मीद भरी नज़रें अहाना पर जा टिकी और उसकी ये खामोशी देखकर चेहरे पर नाराज़गी के भाव उभर आए। पर अहाना बेचारी भी क्या करती, उसके लिए भी तो अपनी शर्म हया झिझक को त्याग कर यहाँ कुछ भी कहना बेहद मुश्किल था। सामने उसका बड़ा भाई बैठा था, उसके सामने कैसे कह देती कि उसे अपने पति के साथ रात बितानी है। वो रिश्तों के बीच की मर्यादा भंग नहीं कर सकती थी और इस सिचुएशन में चुपचाप सब देखने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अक्षय के चेहरे पर नाराज़गी के भाव देखकर अहाना ने बेबस और लाचार सा चेहरा बनाकर इशारों में ही उससे माफ़ी मांग ली और अंत में अक्षय की चाहत अंतरा और निषाद की शैतानी की भेंट चढ़ गई। अन्वय और निशांत के बीच फंसा बैठा अक्षय मन ही मन खींचते हुए निशांत के उल्टे सीधे सवालों के जवाब दे रहा था। फिर कुछ देर उनकी बातें चलीं और वो बेचारा बीच में फंसा बोर होता रहा। करीब 1.5 घंटे बाद दोनों आखिरकार गहरी नींद में सो गए और उनके बीच फंसा अक्षय बेहद आहिस्ता से उनके ऊपर सुस्ताते हाथ पैर को हटाते हुए दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ अंतरा के साथ अहाना कमरे में तो चली आई थी, पर उसे एक पल को भी चैन न आया। रह रहकर बार बार आंखों के आगे अक्षय का नाराजगी भरा चेहरा उभर आता और वो बेचैनी से पहलू बदल देती, पर किसी करवट उसे चैन न आया और निंदिया रानी तो उससे बिल्कुल वैसे ही रूठी थी जैसे अक्षय उससे खफा हो गया था। उसके बगल में लेटी अंतरा कब की नींद की हसीन वादियों की सैर पर निकल चुकी थी, जबकि अहाना बस बेचैनी से करवटें ही बदलती रही और अंत में बहुत देर तक कोशिश करने के बाद खींचते हुए उठकर बैठ गई। घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 3 बजने को थे, सवेरा होने को था, पर कमबख्त नींद आंखों से कोसों दूर थी। जहन में सिर्फ अक्षय का ख्याल था जिसे उसने रोका था, पर उसकी जरा सी ख्वाहिश भी पूरी न कर सकी थी। अहाना ने उठकर बालकनी में जाने को कदम बढ़ाया ही था कि फोन में नोटिफिकेशन की बीप बजी और अहाना पलटकर वापस बेड के पास चली आई। साइड टेबल पर रखा फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर अक्षय का मैसेज चमक रहा था। अहाना, आप सो गई क्या? यही सवाल किया था उसने। पल भर सोचने के बाद अहाना ने रिप्लाई टाइप करके सेंड कर दिया, नहीं। दूसरी तरफ छत पर रेलिंग के पास खड़े अक्षय ने जब रिप्लाई देखा तो उसके उजड़े चमन जैसे उदास चेहरे की खोई चमक लौट आई और लबों पर हल्की मुस्कान थिरक गई। अगर मुमकिन हो तो छत पर आ सकती है आप, बस कुछ ही घंटे हैं अब सुबह होने में और मैं वो वक्त आपके साथ बिताना चाहता हूँ। उस मैसेज में उसकी मासूम सी चाहत कैद थी। अहाना ने पलटकर बेड पर सोई अंतरा को देखा, फिर मैसेज टाइप कर दिया, आते हैं। एक बार फिर संक्षिप्त सा जवाब आया था, पर अक्षय के लबों पर बिखरी कातिलाना मुस्कान की वजह बन गया था। अक्षय ने फोन जेब में रखा और बेसब्री से उसके आने का इंतजार करने लगा। अहाना ने फोन वापस टेबल पर रखा, अलमारी से बिछौना निकाला और तकिया लेने पलंग की ओर बढ़ी। पर उससे पहले कि वो तकिया उठा पाती, अंतरा ने उसके तकिए को अपनी बाहों में भर लिया। कहीं वो जाग ना जाए, इस डर से अहाना ने तकिए का ख्याल ही छोड़ दिया और दबे पांव कमरे से बाहर निकलने की फिराक में ही थी कि अंतरा की नींद से अलसाई आवाज उसके कानों से टकरा गई और उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। जीजू, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? बेचारी अहाना शायद जिंदगी में पहली बार ऐसे चोरी छुपे कोई काम करने जा रही थी और उसमें भी रंगे हाथों पकड़ी गई थी। भय से उसका चेहरा सफेद पड़ गया और घबराहट के मारे हाथ पैर कांपने लगे। अंतरा शैतानों की अम्मा नहीं, दादी थी। अगर उसे कुछ पता चल जाता तो एक तो सारे कानपुर में बात फैलती, उस पर उसे खूब छेड़ती भी। बेचारी अहाना बहुत नर्वस हो गई थी, पर उसने खुद को संभालते हुए हिम्मत करके सर घुमा कर देखा। अंतरा बेड के किनारे में सर लटकाए अधखुली उनिंदी आंखों से उसे देख रही थी।